प्रस्तुत है महिला हिंसा अभियान की चौथी कड़ी।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
जोहार श्रोताओं, मैं सरस्वती
और मैं अमित, स्वागत करते हैं आप सभी का महिला हिंसा अभियान की चौथी कड़ी में।
श्रोताओं, हमारी माओ ने, बेटियों ने, बहनों ने वर्षों तक हिंसा को चुपचाप सहा है। कभी परिवार की इज्जत की खातिर, कभी अपने बच्चों के भविष्य के खातिर और कभी अपनी मर्यादा की खातिर, लेकिन महिलाओं की अग्नि परीक्षा आज तक खत्म नहीं हुई है। आज भी वो एक हिंसा मुक्त जीवन जीने के लिए लड़ रही हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं।
तो श्रोताओं, आज की इस कड़ी में हम यह जानेंगे कि हिंसा महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है।
शुरुआत करते हैं सुनकर सोनावली मुर्मू जी के विचार, जो बता रही हैं कैसे महिलाएं गर्भ से कब्र तक हिंसा और शोषण का शिकार होती हैं।
आज के दिन में देखा जाए तो किसी न किसी तरह महिला शोषण के शिकार हो रहे हैं। हर दिन विभिन्न प्रकार के खबरें छपती है, बलात्कार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या। इस पुरुष प्रधान देश में कितनी महिलाएं अपनी जान तक की गंवानी पड़ रही है। तो क्या संसार में लड़की पैदा होना ही पाप है? अगर लड़की पैदा होना पाप है तो क्या सिर्फ पुरुष से देश चलता? तो क्यों इस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है? अगर हम गौर करें तो महिला सिर्फ पराया से शोषण नहीं होते, सबसे पहले तो अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से, महिलाओं के साथ गर्भ से ही इस तरह का अत्याचार किया जाता है। ज्यादातर माँ बाप बेटा चाहते हैं। जब उसको पता चलता है कि गर्भ में लड़की है तो उसको गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। जिस परिवार में बेटा बेटी है, बेटा स्कूल जाता है और बेटी घर का कामकाज संभालती है। लड़की अपनी इच्छा से पढ़ लिख भी नहीं पाती, छोटे उम्र में ही परिवार वाले शादी दे देते हैं और ससुराल जाके दहेज की प्रताड़ना सहना पड़ता है। आज का कलयुग में माँ बेटी और बहन नाम का कोई चीज नहीं रहा, पर अधिकतर महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अपने कर्मों के फल समझकर सहन करती है। और दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसे अपराध में तो महिलाएं भी शामिल है। दहेज प्रथा जैसे घटना में तो ज्यादातर सास की हाथ रहती है, पर ये नहीं सोचती कि कभी मेरे बेटी भी बहू बनकर दूसरा का घर जाएगी। इसलिए आने वाले कल के बारे में सोचे, इसलिए महिलाओं को सहन करने के बजाय अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर विरोध करना चाहिए, ताकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार कम हो सके। धन्यवाद।
सरस्वती, तुम ये बताओ, क्या हिंसा से महिलाओं को मानसिक आघात भी होता है?
हाँ अमित, जरूर होता है। आओ इसी विषय पर सुनते हैं रमेश महतो जी की आंखों देखी।
आज से लगभग 5 साल पहले की घटना है। एक आदमी अपनी बेटी की शादी तो किस तरह एक लड़का से करवा दिया। वह यह सोचकर कि लड़का और एक लड़का इकलौता था, उसकी एक बहन थी। बेटी की शादी लड़का से तो करवा दिया, फिर वह क्या हुआ कि शादी के बाद लड़का वाले ने लड़की को बहुत सताने लगा। फिर क्या हुआ कि उसके बाद लड़का का भाई उसे लाने के लिए उसका ससुराल पहुँचा, तो सास ससुर लड़की के भाई को बुरा बात कहने लगा कि यह सही से काम नहीं कर रही है, किसी आदमी का सही से सम्मान नहीं कर रहा है। इसी तरह से लड़की को सताना शुरू कर दिया। लड़का का पिता दहेज के रूप में मोटरसाइकिल, कूलर, पंखा आदि तो दे दिया, फिर भी पैसा मांगने लगा। लड़की के द्वारा पैसा मंगवाने लगा, फोन करवाता था, लड़की को खाना पीना बंद कर दिया था। फिर एक दिन लड़का वाला लड़की के ऊपर उसका लड़का के साथ गलत संबंध होने का झूठा आरोप लगा दिया, उसे मायके लाकर छोड़ दिया गया। अब एक लड़की का पिता गांव वालों को लेकर एक बैठक किया, तब लड़का ने लड़की को अपने घर में रखने लगा। फिर कुछ दिन बाद लड़की ने अपने पिता को फोन करके बताया कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत सता रहे हैं। फिर लड़की का पिता लड़की का घर गया और लड़की को यह बताकर आ गया कि ठीक है, हम तुम यहाँ शांति से रहो, कुछ दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तुमको फोन करना, हम बैठक किए हैं बहुत आदमी लोगों साथ में लेकर। और फिर लोगों ने बताया कि ठीक है, जो हुआ तो हुआ, अब नहीं होगा, रात हो गया और लड़की को यह बताकर आ गया, इन लोगों के साथ आ गया। फिर कुछ दिन बाद लड़की ने अपने पिताजी को फोन किया और वह बताया कि मेरे ससुराल वाले फिर से मुझे सताने लगे हैं। फिर तब लड़की का पिता गई लड़की के पास और हाल समाचार पूछे तो वो बताई कि मैं अब नहीं रह पाऊंगा यहाँ, मुझे तो सताया जा रहा है। तब लड़की का पिता यह कहकर चला आया कि ठीक है, हम जिन लोगों के साथ बैठक किए थे उन लोगों से बात कर लेते हैं, उन लोगों को बुला लेते हैं और तुम्हें ले जाएंगे। अगले वह पिताजी अपना घर चलाया। अगले ही दिन सुबह 8 बजे लड़की के भाई के मोबाइल पर एक फोन आया कि हमारी बहन का मृत्यु हो गई है। वह मरी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसे मार दिया गया था। फिर लड़की का पिता अपने गाँव वालों के साथ लेकर गया और देखा कि लड़की कलाश घर में पड़ा हुआ है और लड़की का ससुर फरार है। लड़का का पति और उसका साथ घर में है। लड़का और उसके माता पिता के नाम पर थाना में FIR केस दर्ज किया गया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने लड़का और उसके माँ को जेल भेज दिया गया, लेकिन लड़का का पिता को अटक कर नहीं पाया था और लड़की के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतने साल हो गया लेकिन अभी तक लड़की वालों को न्याय नहीं मिला, अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे अन्याय ना हो लड़की वालों से और लड़की से। धन्यवाद।
तो श्रोताओं, इस दिल दहला देने वाले किस्से को सुनकर हमें यह पता चलता है कि महिलाएं जिनके साथ हिंसा होती है उनमें अक्सर डर और घबराहट बढ़ जाती है, वे तनाव में रहने लगती हैं, उन्हें विश्वास की कमी हो जाती है, वे अपने आप से घृणा करने लगती हैं, हमेशा क्रोध और चिंता में रहती हैं, पुरुषों को देखकर डर जाती हैं, अकेले कहीं आने जाने में संकोच करती हैं, बार बार घटी घटना याद आती है, किसी काम में मन नहीं लगता है और कभी कभी तो आत्महत्या जैसे विचार भी आते हैं।
ये तो बात उन महिलाओं की थी जिन पर हिंसा होती है, पर क्या तुमने ये सोचा है कि एक महिला पर हो रही हिंसा का दूसरी महिलाओं के जीवन पर क्या असर पड़ता है? सुनते हैं गढ़वा मेराल से आशा जी के अनुभव को।
कहीं भी महिला अकेले निकलती है तो उन पर दबाव होता है। जैसे कि अभी मैं शिक्षा की पंचायत में गई थी नवजात शिशु मृत्यु दर पर चर्चा करने के लिए मुखिया के साथ ग्राम सभा के अनुसार बैठक करने के लिए, तो वहाँ पर भी जाने के बाद हम पर दबाव हुआ कि तुम अकेले कहाँ चल जाती है, बच्चों को घर में अकेले छोड़ देती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा और कुछ देखना है अपने से देख करके चलो, ऐसे करने से तुम पर कुछ और असर हो सकता है, जिसे गांव में ही कहीं लड़की को मार करके रात में 6 बजे बाहर निकली थी और कुआं में उसको डाल दिए तो सुबह हमें लोग देख करके उसको निकाले। ये बात हम पर हुआ कि अकेले तुम जाती हो सकता है तुमको भी ऐसे ही लोग कर देंगे दूसरा पंचायत में जाने के लिए, तो तुम ऐसे करो अपना ही पंचायत में करो काम और 4 बजे से पहले तुम अपना घर वापस आ जाओ, और घर खेती बाड़ी के लिए भी बहुत मतलब दबाव होता है कि तुम ऐसे करो अपना ही काम करो कहीं मत जाओ, तुम अपने से करेगी तो अच्छा होगा, किसी के साथ कहीं नहीं जाना, किसी प्राय पुरुषों के साथ मतलब बात नहीं करना और मोबाइल से भी कहीं बात मत करो, सब कह करके घर में दबाव देते हैं, ये भी महिलाएं ही करने आती। धन्यवाद।
सरस्वती, मैं सोच रहा था कि इस प्रकार से तो महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर हिंसा का अत्यंत प्रभाव पड़ता होगा।
हाँ अमित, अक्सर हिंसा की पीड़ित महिला को कई तरह के शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक चोटों के अलावा उन्हें यौन संक्रमण रोग HIV जैसे खतरनाक बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। उनके साथ अनचाहा गर्भधारण या गर्भपात होना, रक्तचाप में वृद्धि होना, अर्थराइटिस, तनाव बढ़ना, पूरे शरीर में दर्द का रहना, पाचन क्रिया में तकलीफ होना आदि समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है।
अच्छा, तो ये बताओ कि हिंसा से पीड़ित महिला को आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है?
बहुत अच्छा सवाल अमित। अक्सर हिंसा की पीड़ित महिला को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कार्यस्थल में नहीं जाने के कारण आर्थिक बोझ बढ़ना, दवाई और इलाज में खर्चा होना, कानूनी लड़ाई के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक समस्या आती है, नए मकान या किराए का आर्थिक बोझ बढ़ना और सबसे अहम बच्चों की सुरक्षा और भरण पोषण का भी अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है।
और सामाजिक दृष्टिकोण से हिंसा से पीड़ित महिला को किस तरह का समस्या होता है?
पीड़ित महिला को सामाजिक दृष्टिकोण से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें सामाजिक और कानूनी सेवा लेने में कई समस्याएं होती है, अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ जाती है इत्यादि समस्याएं।
तो श्रोताओं, ये सब बातें जानकर मेरे मन में ये सवाल उठते हैं कि हम सब अपनी बेटियों को, बहुओं को, बहनों को कहते हैं कि घर जल्दी आ जाना, अकेले कहीं मत जाना, किसी लड़के को अपने साथ ले जाना, क्यों हम उनको किसी पर निर्भर करते हैं, आखिर क्यों हम उसे लड़ने की क्षमता नहीं देते।
सही कहा तुमने अमित। श्रोताओं, हम इस मुद्दे पर आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक हिंसा मुक्त दुनिया की कल्पना किस प्रकार से करते हैं। आप लोगों के विचार में आप लोग, जी हाँ श्रोताओं, आप सभी महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं?
सवाल फिर से एक बार, हमें बताएं कि आप एक हिंसा मुक्त दुनिया की कल्पना किस प्रकार से करते हैं। आप लोगों के विचार में आप लोग महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं? अपने जवाब हमें जरूर दें, नंबर 3 दबाकर।
श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज की हमारी पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी। हमारे काम को और बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, नंबर 3 दबाकर।
धन्यवाद।